नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सावधान एवं सतर्क व्यक्ति विश्व को ज्योतिर्मय करते हैं। यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति सोमं लोकं पभासेति अभ्भा मुत्तो वचन्दिमा। जो पहले प्रमाद करके भी पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघमुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। धम्मपद गाथा 172। जेतवन में निवास करते समय भगवान बुद्ध ने स्थविर समुंजनी के संदर्भ में यह गाथा दी थी। वे प्रातः एवं अपराह्न दोनों समय नित्य झाड़ू लगाते रहते थे। एक दिन वे झाड़ू लेकर वहां गए जहां स्थविर रेवत अपना दिन बिताते थे तथा उन्हें वहां बैठे पाया। उन्होंने सोचा, ये आलसी महोदय धर्म परायण व्यक्तियों के चढ़ावे का आनंद लेते हैं, फिर वापस आकर अपने कक्ष में बैठते हैं, क्यों न वे कम से कम एक कक्ष में झाड़ू लगाते। इस बीच थेर रेवत ने विचार किया, मैं इस भिक्षु को एक परामर्श दूंगा। अतः उन्होंने थेर समुंजनी से कहा, आयुष्मान यहां आओ, जाकर स्नान करो, फिर वापस मेरे पास आओ। थेर समुंजनी ने वही किया जो उनसे कहा गया। तब थेर रेवत ने चेतावनी देते हुए उनसे कहा, आयुष्मान एक भिक्षु को सदैव सफाई ही नहीं करनी चाहिए तथा उसे सफाई के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, इसके विषय में उन्हें बताया। जब भोजन एकत्र करने का समय हो तो उसे भिक्षा के लिए जाना चाहिए तथा लौटकर ध्यान लगाना चाहिए। हालांकि वे एक बार प्रातः तथा एक बार सायं झाड़ू लगा सकते हैं। स्थविर समुंजनी ने बड़ी निष्ठा से स्थविर रेवत के परामर्श का पालन किया तथा बहुत ही कम समय में उन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात सभी कमरे कूड़े से भरे रहने लगे तो भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि वे अब उनकी सफाई क्यों नहीं करते। उन्होंने उत्तर दिया कि पहले वे असावधान थे, किंतु अब वे सावधान हो गए हैं। भिक्षुओं ने यह बात जब बुद्ध से कही तो उन्होंने उस गाथा की घोषणा की जिससे हमने प्रारंभ किया है। सयाजी उबाखी के प्रशिक्षण के समय बर्मा में ऐसे अनेक व्यक्ति थे। हम आपको बर्मा के उच्च अधिकारियों जैसे कुछ उत्कृष्ट व्यक्तियों की कहानियां सुनाएंगे। ये लोग सावधान व्यक्ति विश्व को ज्योतिर्मय करते हैं के कथन को चरितार्थ करते हैं। आनापान से लाभ। हमने स्पष्ट किया है कि आनापान में श्वास का उपयोग एकाग्रता के कर्मस्थान के रूप में करने का लाभ यह है कि श्वास सदैव हमारे साथ होती है। ऐसे समय जब हम श्वास नहीं लेते केवल तभी होते हैं जब हम अजन्मे शिशु अर्थात भ्रूण हो, डूब रहे हों या मृत हो चुके हों। अन्य स्थितियां जब श्वास विद्यमान नहीं होती वे ये हैं, जब आप अचेतन अस्तित्व में हो, सूक्ष्म भौतिक या अभौतिक लोक में जन्मे हों, यदि आप चतुर्थ समाधि या ध्यान पाली में ज्ञान में हों या निरोध प्राप्त कर चुके हों। किंतु यहाँ हम सभी श्वास ले रहे हैं। बर्मा के पूर्व राष्ट्रपति ने जब साधना प्रारंभ की तो उन्हें लगा कि उनकी श्वास बंद हो गई है, किंतु जब उन्होंने माँ श्यामा जी से कहा कि उनकी श्वास बंद हो गई है तथा अपने कक्ष से बाहर जाने के लिए जब वे उठने लगे तो माँ श्यामा जी ने उन्हें समझाया कि उनकी श्वास बंद नहीं हुई थी अपितु अत्यंत सूक्ष्म हो गई थी। तथापि उन्होंने यह कहते हुए जोर दिया, नहीं नहीं, मैं वास्तव में श्वास नहीं ले रहा हूँ। उसके पश्चात वे स्नान के लिए चले गए तथा स्नान के बाद वे माँ श्यामा जी के पास चकित होकर दौड़ते हुए आए और बोले, आप ठीक कह रही थी, आखिरकार मैं श्वास ले रहा हूँ। शारीरिक गतिविधि ने श्वास को प्रबल कर दिया था तथा वे उसे फिर से अनुभव कर सकते थे। हम श्वास नहीं ले रहे हैं ऐसी धारणा के पीछे यह कारण संभव हो कि हमारी श्वास सूक्ष्म हो गई हो तथा हमारी समझ इसका पता लगाने के लिए अत्यधिक स्थूल हो। अतः हमें श्वास का पता करते रहने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम सही ढंग से काम करते रहें तो इसके पुरस्कार अत्यंत महान हो सकते हैं। जैसा कि सयाजी उबाखी ने कहा है, केवल उन्हीं की सफलता का आश्वासन दिया जा सकता है जो उचित उद्देश्य से साधना में जुटे हुए हैं। प्रकृति के परम सत्य में अंतर्दृष्टि के आधार पर मन की शक्ति एवं शुद्धता के विकास के साथ कोई भी व्यक्ति मानव जाति के कल्याण के लिए सही दिशा में अनेक कार्य करने में सक्षम हो सकता है। यह एक आम धारणा है कि उस व्यक्ति की तुलना में जो इतना विकसित नहीं है, जिस व्यक्ति की चित्त एकाग्रता की शक्ति प्रबल हो तथा जो स्वेच्छापूर्वक पूर्ण मानसिक संतुलन सुरक्षित कर सके, उसे श्रेष्ठतर परिणाम प्राप्त होंगे। अतः वह व्यक्ति जो साधना के एक शिविर का अर्थात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सफल अनुभव करता है, उसे निश्चित रूप से अनेक लाभ होते हैं, चाहे वह कोई धर्म परायण व्यक्ति हो, प्रशासक हो, राजनीतिज्ञ हो, व्यवसायी हो अथवा कोई छात्र हो। जिन सरकारी अधिकारी का पहले उल्लेख किया गया था, वे अपने पद के कार्यकाल के समापन पर ध्यान लगाने के लिए केंद्र पर आए थे। वे अभी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे तथा अनेक सशस्त्र अंग रक्षकों के साथ आए थे। उनकी शिक्षा पश्चिम में हुई थी तथा दुर्भाग्य से उन्होंने मदिरापान की बुरी आदत पकड़ ली थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वे अब जल नहीं केवल मदिरापान करते थे। सयाजी एवं श्यामा जी के मार्गदर्शन में काम करके वे 1.5 घंटे तक स्वेच्छा से गहन ध्यान में जाने में सक्षम हो गए तथा उन्होंने कहा कि एक बार धम्म में स्थापित हो जाने के बाद उनके लिए पुनः मादक द्रव्य पीना असंभव था। उन्होंने कहा, यही वास्तविक सील है। अब तो स्वयं को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करने या तनाव मोल लेने की बात नहीं थी। ये वे ही थे जिन्होंने श्यामा अर्थात महिला आचार्य शीर्षक दिया था, जिसे सयाजी ने अनुमोदित किया। बाद में वे श्यामा जी अर्थात महान महिला आचार्य के रूप में जानी जाने लगी। वहाँ एक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भी थे, जो इतने मोटे थे कि उन्हें नीचे बैठने में भी कठिनाई होती थी। किंतु जब उन्होंने आनापान करना प्रारंभ किया तो वे ठीक से बैठने लगे, तथा सयाजी एवं माँ श्यामा जी की सहायता से वे स्वेच्छा से गहन ध्यान में जाने में सक्षम हो गए। एक अन्य व्यक्ति जो पाली के विद्वान थे, वे भी सयाजी एवं माँ श्यामा जी की सहायता से स्वेच्छा से गहन ध्यान में जाने में सक्षम हो गए। उन्होंने बताया कि ध्यान लगाना सीखने के पहले उनकी प्रशासन के लिए कुछ कठिन प्रतिवेदनों यानि रपटों को लिखने में महीनों लग जाते थे, किंतु एकाग्रता विकसित करने के पश्चात वे उन्हें कुछ दिनों में ही पूरा कर सकने लगे। उन्होंने ही श्यामा जी को माँ यानि मदर श्यामा कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। एक आयकर अधिकारी आए थे जो गंभीर दमा यानि एस्मा से पीड़ित थे। वे केंद्र पर पगोडा में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने में भी सक्षम नहीं थे, किंतु उन्होंने भी उपर्युक्त मनोदशाएं प्राप्त की तथा उनको अपने दमा से भी पर्याप्त मुक्ति मिली। उन सभी लोगों ने पाया कि साधना से न केवल उनकी आध्यात्मिक सिद्धियों में अपितु अपने अपने लोक सेवा पदों के कर्तव्यों का दक्षता से निर्वाह करने में भी उन्हें सहायता मिली। डॉक्टर ई के नॉटिंघम ने अपने शोध पत्र बर्मा में बौद्ध ध्यान में पूछा है, संभवतः एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बांध के रूप में प्रयोग करने के लिए क्या साधना शांत एवं संतुलित ऊर्जा के भंडार के सृजन में सहायक नहीं हो सकती। लोक सेवा के उपर्युक्त उच्च अधिकारियों के अपने अपने पदों में सफल योगदान को देखते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दे सकते हैं। आपको आनापान के लिए निर्देश देना अत्यंत सरल था, कुछ ही मिनटों में पद्धति समझाई जा सकती है, किंतु उसका अभ्यास अत्यंत कठिन है। सशक्त सती एवं अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। विशुद्धि मार्ग में आचार्य बर्मी भाषा में अशिन बुद्ध घोष ने कहा है कि साधक को एक हलवाहे के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। वह अपने बैलों से जुताई करने के बाद उन्हें घास चरने के लिए छोड़ देता है तथा वह स्वयं छाया में विश्राम करता है। बैल दूर तक इधर उधर विचरण कर सकते हैं, किंतु यदि वह कुशल एवं बुद्धिमान है तो वह उनकी तलाश में उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए जंगल में यहां वहां नहीं भटकेगा। इसके बजाय वह अपनी रस्सी तथा लाठी लेकर सीधे पनघट पर जाएगा, जहां बैल पानी पीने एवं स्नान के लिए जाते हैं। जब वह उन्हें वहां देखता है तो रस्सी से बांधकर तथा लाठी की सहायता से प्रोत्साहित करता हुआ उन्हें लाता है। इस प्रकार वह उन्हें वापस लाकर हल में जोतकर अपना काम पुनः प्रारंभ कर सकता है। साधक के लिए सती रस्सी की तरह तथा समझ लाठी की तरह है। वह नाक के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर जहाँ वे सामान्य रूप से स्पर्श करते हैं अपने आश्वास एवं प्रश्वास को ढूंढेगा। इस प्रकार उसे उन्हें पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे कुशल हलवाहा जलाशय पर अपने बैलों को पाने के लिए सुनिश्चित था, वह श्वास के बोध को सति की रस्सी से सुरक्षित कर सकता है तथा उनको स्पर्श के स्थान बिंदु पर जोतकर विवेक की लाठी से प्रोत्साहित कर सकता है। यदि साधक सही तरीके से काम करता है तो निमित्त अर्थात संकेत शीघ्र ही प्रकट होगा। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में निमित्त भिन्न भिन्न होता है, किंतु एक बात किसी विशुद्ध मन के निमित्तों में समान है, वह यह कि विशुद्धि का लक्षण काला नहीं अपितु श्वेत होता है। हमें बार बार उस पर ध्यान देते रहना चाहिए। पूर्वजों को उद्धृत करते हुए बुद्ध घोष ने कहा है, निमित्ते ठपयम चित्तम नानाकारम विभावयम धीरो असास पस्सा से सकम चित्तम निबंधति। निमित्त में चित्त को स्थिर रखते हुए धैर्यवान व्यक्ति अन्य सभी बातों को दूर रख आश्वास एवं प्रश्वास पे अपने चित्त को बांधता है। यदि हम इस एकाग्रता को विकसित कर सके तो यह न केवल हमारे लिए अपितु सारे विश्व के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आपको याद होगा, हमने पहले ही कहा है कि बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में आने के लिए हमें 10 पारमिताओं पर अतीत में एक लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है तथा जो अभ्यास हमने अतीत में किया है उसी पर हमारी प्रगति की गति निर्भर करेगी। यहाँ तक कि बुद्ध के समय भी अनेक लोग थे जिन्हें निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ, किंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें अतिशीघ्र जागृति प्राप्त हो गई। ऐसा ही दोनों प्रमुख शिष्यों के साथ हुआ। दो प्रमुख शिष्य उपतिस एवं कोलित नाम के दो मित्र थे। वे दोनों अत्यंत समृद्ध थे। एक रात जब वे एक नाटक देख रहे थे तो नाटक के अंत में उन्होंने एक मृत्यु का दृश्य देखा। चूंकि वे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसी वास्तविकताओं के अभ्यस्त नहीं थे, इससे वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें यह बड़ी गहराई से एहसास हुआ कि एक दिन उनकी भी मृत्यु होगी। अतः उन्होंने एक दूसरे से कहा, यदि मरण की प्रक्रिया होती है तो अमरण की भी प्रक्रिया होनी चाहिए, तथा उन्होंने उसे प्राप्त करने का संकल्प लिया। वे अपनी संपत्ति का त्याग कर विद्वान गुरुओं की खोज में निकल पड़े। राजगह या आधुनिक समय के राजगीर में गुरु संजय से उनकी भेंट हुई तथा वे उनके शिष्य बन गए। बुद्ध की जागृति से पहले 6 सबसे अधिक ज्ञात गुरुओं में संजय भी एक थे। वे इस सीमा तक विकसित हो गए थे कि किसी मृतक की केवल एक अस्थि देखकर ही बता देते थे कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है, किंतु उन्हें दुख का, अनित्य पाली में अनिच्य का तथा अनात्म पाली में अनत्ता का ज्ञान नहीं था। दोनों मित्रों ने उनके मार्गदर्शन में अध्ययन किया तथा कुछ ही समय में उनकी शिक्षा में पारंगत हो गए, किंतु उन्होंने पाया कि संजय उन्हें अमरत्व में प्रशिक्षित नहीं कर सकते। अतः उन्होंने किसी श्रेष्ठतर गुरु की खोज करने का निर्णय लिया। एक दिन उपतिस की, जो बाद में सारिपुत्र के नाम से जाना जाने लगे, अस्सजी से, जो बुद्ध द्वारा सबसे पहले प्रशिक्षित 5 तपस्वी शिष्यों में सबसे कम आयु के थे, भेंट हुई। अस्सजी ने बुद्ध की शिक्षा से एक गाथा सुनाई तथा उसके आधे में ही अर्थात केवल 2 पंक्तियों में ही सारिपुत्र जागृति के पहले चरण के फल की अवस्था में स्थापित हो गए, वे एक सोतापन्न हो गए। जो गाथा अस्य जी ने सुनाई थी वह यह थी। ये धम्मा हेतु पभवा तेसम हेतुम तथागतो आह तेसम च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। जो भी धम्म अनुबंधित हैं तथागत ने उनके कारणों एवं उनके समापन को स्पष्ट कर दिया है। महाश्रमण की यही शिक्षा है। सारिपुत्र तब अपने मित्र से मिलने गए तथा अस्य जी से अपनी भेंट के विषय में उन्हें बताया। अस्य जी में व्याप्त शालीनता नम्रता तथा समभाव के विषय में एवं उनके गुरु गौतम बुद्ध के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने वह गाथा भी दोहराई तथा कोलित भी जो बाद में महामोग्गल्लान के नाम से जाना जाने लगे सोतापन्न हो गए। वे बुद्ध के पास गए तथा उन्होंने भिक्षु के रूप में प्रव्रज्या व उपसंपदा ली एवं अपनी साधना प्रारंभ कर दी। बुद्ध ने जैसे ही उन्हें आते देखा वे समझ गए कि ये उनके दो प्रमुख शिष्य होंगे। अतः बुद्ध ने अपने आसपास के भिक्षुओं से कहा, ये दो मित्र कोलित एवं उपतिस आ रहे हैं, ये दोनों मेरे प्रमुख शिष्य होंगे, इनकी जोड़ी धन्य है। कई भिक्षु अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण थे एवं उन्होंने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, किंतु बुद्ध ने स्पष्ट किया कि इन दोनों मित्रों ने यह पद प्राप्त करने के लिए अपने अनगणित जन्मों में अथाह परिश्रम किया था तथा उन्होंने उनके अतीत के कुछ जन्मों का उदाहरण दिया। बुद्ध ने कहा, भिक्षु यह उनकी आकांक्षा रही है, मैं पक्षपात के साथ कोई कार्य नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि ये अन्य व्यक्ति जो अच्छी प्रगति कर रहे हों उनके प्रति ईर्ष्या करना अपना समय एवं ऊर्जा व्यर्थ करना है। धम्म में कोई पक्षपात नहीं हो सकता। हम जो अर्जित करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। सारिपुत्र एवं मोग्गल्लान ने बुद्ध को अपने वर्तमान जीवन की कहानी सुनाई तथा स्पष्ट किया कि सोतापन्न होने के बाद वे अपने शिक्षक संजय के पास वापस गए थे। उन्होंने कहा, हम उन्हें आपके नेतृत्व के अंतर्गत ले आना चाहते थे तथा उनकी साधना के खोखलेपन के विषय में हमने उन्हें बताया एवं यहाँ आने के लाभ के विषय में उनसे बात की, किंतु उन्होंने मेरे लिए अब एक शिष्य बनना किसी सुराही का एक प्याले में परिवर्तित हो जाने जैसा होगा, मेरे लिए एक शिष्य की तरह जीना संभव नहीं है। जब उन्होंने बताया कि अनेक लोगों का बुद्ध की ओर झुकाव हो गया था तथा पूछा कि अब उनका क्या होगा, तो संजय ने उनसे पूछा, इस संसार में अधिकांश व्यक्ति बुद्धिमान है या मंद? तो उत्तर था, महोदय इस संसार में अनेक मंद हैं, किंतु बुद्धिमान तो बहुत कम। तो संजय ने कहा, ठीक, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान गौतम के पास जाएंगे तथा मंद मेरे जैसे मंद के पास आएंगे, तथा उन्होंने उनको लौटा दिया। जब उन्होंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो बुद्ध ने घोषणा की, भिक्षुओं अपने गलत दृष्टिकोण के कारण संजय अनावश्यक को आवश्यक तथा आवश्यक को अनावश्यक समझता है। अनावश्यक को दूर रखते हुए आपने आवश्यक को आयोजित किया है। तो सारिपुत्र और महामोग्गल्लान ने अरहत्व के लिए साधना प्रारंभ कर दी। सारिपुत्र राजगृह के निकट भालू की मांद नामक एक गुफा में गए तथा मोग्गल्लान मगध में कल्लवल पुत्र के निकट जंगल में चले गए। उन्होंने अपनी साधना में महान प्रयास डाला, किंतु फिर भी वे अपनी तंद्रा पर नियंत्रण पाने में सक्षम न हो सके। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उन्हें नींद न आए, किंतु वे अपने शरीर एवं सिर को सीधा रखने में असमर्थ थे। किंतु बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए एक आचार्य के उत्तरदायित्व के साथ उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटाई। अपनी अलौकिक दृष्टि के द्वारा वे मोगल्लान की कठिनाइयों को जान गए तथा वे उनके समक्ष प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपने सामने बुद्ध को खड़े पाया तो उनकी अधिकांश तंद्रा, थकान तथा व्याकुलता लुप्त हो गई। बुद्ध ने पूछा, मोगल्लान ऊंग रहे हैं ना? उन्होंने कहा, भंते हाँ। तब बुद्ध ने उन्हें निर्देश दिया, इसलिए मोगल्लान, जिस संज्ञा से युक्त होने पर तंद्रा आती है उस संज्ञा को मन में स्थान न दें, उस संज्ञा को बार बार मन में न लाएं। इस प्रकार यह संभव है कि जो तंद्रा है वह दूर हो जाए, किंतु यदि वह न जाए तो जो उपदेश सुने हैं जैसे कंठस्थ किया है उसी के अनुसार उस धर्म पर तर्क वितर्क कर, विचार कर, मन से मनन करने से यह संभव है कि यह तंद्रा चली जाए। यदि तंद्रा बनी रहती है तो जो भी उपदेश सुने एवं कंठस्थ किए हैं उनका विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए। यदि तब भी तंद्रिल हैं तो दोनों कानों को रगड़ें तथा अपने हाथों से अपने शरीर के अंगों को मलें। यदि अभी भी तंद्रिल हैं तो अपने आसन से उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारकर चारों ओर सभी दिशाओं में देखें एवं ऊपर तारागण तथा नक्षत्रों को देखें। यदि तंद्रा अभी भी न गई हो तो रात और दिन दोनों में आलोक अर्थात प्रकाश की संज्ञा को मन में स्थान दें। अतः स्वच्छ एवं निर्मल चित्त से एक देदीप्यमान मानस जागृत करें। यदि यह भी काम नहीं करता तो ध्यान को बिना इधर उधर भटकने देते हुए उसे शरीर में बनाए हुए चंक्रमण करें, अर्थात आगे पीछे चलें एवं आगे पीछे चलने का बोध बनाए रखें। यदि यह सब विफल होता है तो सत्य के साथ स्पष्ट रूप से अवगत रहते हुए सिंह मुद्रा में अर्थात दाहिने करवट एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर मन में उठने का विचार रखते हुए लेट सकते हैं। जब जागें तो यह सोचते हुए कि मुझे शयन एवं विश्राम के सुख में तथा नींद के आनंद में लिप्त नहीं होना चाहिए, शीघ्र उठ जाना चाहिए। अतः आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कि प्रमुख शिष्यों के लिए भी आनापान साधना सरल नहीं थी। बुद्ध के संरक्षण तथा मार्गदर्शन के कारण मोगल्लान अपनी साधना में सक्षम हुए एवं एक सप्ताह के भीतर उन्होंने अरहत्व प्राप्त किया। सारिपुत्र को एक सप्ताह और लगा क्योंकि धम्म को समझने में बुद्ध के बाद वे दूसरे थे और इसके लिए उन्हें और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ी। राजा पसे नदी को बुद्ध का परामर्श। बुद्ध ने तंद्रा से बचने के लिए एक गृहस्थ को भी परामर्श दिया था। एक समय कौशल के राजा प्रसन्नजीत पाली में पसे नदी बुद्ध के दर्शन के लिए आए। वे बहुत थके लग रहे थे तथा चक्कर काटते हुए टहल रहे थे। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वे अपने विश्राम करने के पहले ही वहां आए थे। राजा ने उत्तर दिया कि नहीं, वे भोजन के पश्चात सदैव ऐसा कष्ट भोगते थे। ऐसा था कि उनकी दाल सब्जी चटनी के साथ बाल्टी भर उबले चावल खाने की आदत थी। अतः बुद्ध ने पसेना नदी को बताया कि अधिक भोजन सदैव कष्ट लाता है तथा निम्न गाथा सुनाई। मिद्धि यदा होति महघसोश्च निद्दायिता संपरिवत्तसाई महावरा हो वनिवा पपुट्ठी पुनः पुनम गभ्व मुपेति मंदो। यदि कोई व्यक्ति अकर्मण्य है, अधिकाधिक भोजन करता है, अपना अधिकांश समय नींद में बिताता है, अनाज पर पले एक बड़े सुअर की तरह बैठता लुढ़कता रहता है, ऐसा अनाड़ी बारंबार गर्भ में प्रवेश करेगा। तथा उन्होंने निम्नलिखित गाथा के साथ छंद संपन्न किया। मनुजस्य सदा सतीमतो मत्तम जानतो लद्ध भोजने तनुकस्य भवन्ति वेदना क्षणिकम जीरति आयु पालय। यदि कोई व्यक्ति सतत अवगत है तथा भोजन में संयमित है तो उसका कष्ट साधारण होगा, वह शनै शनै वृद्ध होगा एवं लंबे समय तक जीवित रहेगा। बुद्ध ने राजा के भांजे सुदर्शन, पाली में सुदस्सन, को यह गाथा सिखाई तथा राजा के भोजन के समय इसका पाठ करने के लिए कहा। कुछ समय बाद राजा थोड़े से चावल से ही संतुष्ट होने लगे तथा वे दुबले एवं प्रसन्न रहने लगे। जागृति की तैयारी। हमने कई बार अतीत के कुशल कार्यों अर्थात 10 पारमिताओं के विकास के महत्व का उल्लेख किया है। आप में से कुछ लोग इस बात से चिंतित हो सकते हैं कि आप में पारमिताओं का अच्छा भंडार है या नहीं। सयाजी उबाखी ने कहा है कि हम यह मान सकते हैं कि केवल वही व्यक्ति जो सद्गुणों के संचय में परिपक्व हैं निर्वाण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित होंगे तथा बौद्ध साधना में गंभीरता से प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक होंगे। हम एक अरहत बनने के लिए पारमिताएं, पाली में पारमी, एकत्र कर रहे हो सकते हैं। इसमें लगभग 100 से 1000 कल्प तक लग सकता है, किंतु यदि कोई इससे भी उच्चतर लक्ष्य रखता है तो उसे और भी लंबे समय तक काम करना होगा। यदि कोई 80 प्रमुख शिष्यों में से एक होना चाहता है तो उसे 10,000 कल्प लगेगा। जो 2 प्रमुख शिष्यों में से एक होना चाहता है उसके लिए और भी अधिक तैयारी की आवश्यकता है। प्रत्येक बुद्ध, पाली में पच्चेक बुद्ध, जो दूसरों को शिक्षा नहीं देते, बनने के लिए इससे भी अधिक तैयारी लगती है तथा शिक्षक बुद्ध बनने के लिए 3 स्तर की तैयारियां हैं। शिक्षक बुद्ध, जिनकी सबसे विकसित गुणवत्ता विवेक अर्थात पहिया है। शिक्षक बुद्ध जो श्रद्धा में सबसे प्रबल हैं। अंत में एक शिक्षक बुद्ध जिनमें सर्वाधिक पुरुषार्थ या वीर्य है। बनने के लिए 16 असंख्य तथा 100,000 कल्प लगते हैं। अतः इस कल्प के भावी बुद्ध मैत्रेय, पाली में मैत्रेय, ने जो उस श्रेणी के बुद्ध हैं जिन्हें तैयारी के लिए सबसे अधिक समय लगता है, गौतम बुद्ध के पहले से ही अपनी पारमिताओं पर काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमने आचार्य बुद्ध घोष के विशुद्धि मार्ग, पाली में विशुद्धि मग्ग से कई बार उद्धृत किया है। जब वे पहली बार भारत से श्रीलंका गए थे तो पाली ग्रंथों की टीकाओं का अध्ययन करने के लिए, जब उन्होंने ग्रंथों को देखने का अनुरोध किया तो श्रीलंका में भिक्षुओं ने उन्हें एक गाथा की दो पंक्तियां दी तथा उनकी निष्ठा एवं समझ के परीक्षण के रूप में उन पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा। वह गाथा थी, सीले पतिथाय नरो सपयो चित्तम पय्यम च भावयम आतापी निपको भिक्षु सो इमं विजटये जटम। शील सदाचार में प्रतिष्ठित होकर जो बुद्धिमान व्यक्ति जब समाधि और प्रज्ञा की भावना करता है तब वह उद्योगी व ज्ञानवान पुरुष भिक्षु होकर इस जंजाल अर्थात भव बंधन को छिन्न भिन्न कर सकता है। परिणाम स्वरूप एक पुस्तक हुई जो अंग्रेजी अनुवाद में 800 से अधिक पृष्ठों की है तथा पाली ग्रंथों में पाई जाने वाली समूची शिक्षा का सार है। भिक्षुओं ने जब यह टीका विशुद्धि मार्ग पढ़ी तो वे बोले कि बुद्ध घोष को अवश्य ही बोधिसत्व अर्थात पूर्ण जागृति के प्रयोजन वाला अर्थात भावी बुद्ध मैत्रेय होना चाहिए। सयाजी उबाखी ने इस टीका की चर्चा करते समय कहा कि यदि हम इसे 1000 भागों में विभाजित करें, तत्पश्चात सयाजी की शिक्षा को 1000 भागों में विभाजित करें और उनकी तुलना करें तो वे पूरी तरह एक दूसरे के समान निकलेंगी। अब हमें काम करने के लिए एक बहाने के रूप में किसी आकांक्षा का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल एक बुद्ध ही किसी आकांक्षा की पुष्टि कर सकते हैं तथा कोई निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि केवल एक बुद्ध ही काफी दूर तक अतीत एवं भविष्य में देख सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति ने पर्याप्त तैयारी की है तथा उसमें उपनिश्रय अर्थात आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता है। विशुद्धि मार्ग में एक भिक्षु का प्रकरण आता है। स्थविर पाली में थेर, महासंघरक्षित पाली में महासंघरक्षित से जब वे अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे पूछा गया कि क्या वे जागृति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। एक युवा भिक्षु ने उनसे पूछा, भंते लोग यहाँ 12-12 लीग दूर से यह सोचकर कि आप निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं आए हैं। यदि आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में मर जाते हैं तो अनेक लोग निराश होंगे। थेर ने कहा, आयुष्मान यह सोचकर कि मैं मैत्रेय बुद्ध को देखूंगा मैंने अंतर्दृष्टि के लिए प्रयास नहीं किया। मेरी बैठने में सहायता करो तथा मुझे एक अवसर दो। युवा भिक्षु ने उनकी बैठने में सहायता की तथा कक्ष से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह निकलने लगा थेर ने अंगुल स्फोट किया अर्थात चुटकी बजाई, यह इंगित करने के लिए कि उन्होंने अर्हत्व प्राप्त कर लिया है। भिक्षु एकत्रित हुए तथा उनसे बोले कि मृत्यु की घड़ी में सर्वोच्च पद पाना अत्यंत कठिन होता होगा, किंतु उन्होंने कहा, मित्रों यह कोई मुश्किल नहीं था लेकिन मैं बताता हूं कि क्या कठिन होता है। मित्रों मैं देख रहा हूं कि जब से मैं भिक्षु बना तब से मेरे द्वारा कोई भी कार्य अनजाने में तथा बिना सत्य के नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए जो अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं सत्यमान अर्थात जागरूक रहना कितना कठिन है। तथा यदि भिक्खु ने कहा कि निर्वाण प्राप्त करना सरल था तो यहाँ अर्थ यह है कि जब सभी आवश्यक कार्य पहले से ही संपन्न हो चुके हों तो अंतिम लक्ष्य सरल हो जाता है। जब तक हमने अपने आप को तैयार नहीं कर लिया है तब तक यह केवल कठिन ही नहीं असंभव है। आकांक्षाओं के विषय में एक और बात जानने की यह है कि यदि हम में कोई आकांक्षा रही हो तथा एक बुद्ध ने उसकी पुष्टि की हो तो यह निश्चित है कि हम जागृति तक तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक सही समय न आ जाए। किंतु जितनी ही अधिक हम तैयारी करेंगे जितना ही अधिक परिश्रम करेंगे उतनी ही सरलता से हमारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। यदि हम साधना न करें तो हमें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ सकता है। अत्यधिक प्रयास सोण का प्रकरण। हमने प्रयास करने के विषय में बहुत बातें की हैं किंतु अब हम एक ऐसे भिक्खु का प्रकरण बताते हैं जिन्होंने अत्यधिक प्रयास किया था। बुद्ध के समय में सोण नामक एक युवक था जो इतना सुकुमार था कि उसके पैरों के तलवों में बाल उग गए थे। एक दिन राजगह के सम्राट बिभीषार ने 80,000 गांवों के प्रतिनिधियों को एकत्रित किया तथा सोण को आने के लिए संदेश भेजा। सोण के माता पिता ने उसको चेतावनी दी कि यद्यपि सम्राट ने उसे वहां इसलिए बुलाया था कि वे उसके तलवे देखना चाहते थे उसे सावधान रहना चाहिए तथा अपने तलवों को सम्राट की ओर करके उनका अनादर नहीं करना चाहिए। उसे तलवों को ऊपर करते हुए पर्यंक बद्ध होकर अर्थात पालथी मारकर बैठना चाहिए जिससे सम्राट उन्हें देख सके। सोण महल में ले जाया गया तथा वह वहां वैसे ही बैठा जैसे उसे बताया गया था। सम्राट ने गृहस्थ जीवन के विषय में प्रतिनिधियों को निर्देश दिया। तत्पश्चात वे बोले, अब जाओ बुद्ध को नमन करो, वे आगे आने वाले जन्मों के लक्ष्यों के विषय में आपको निर्देश देंगे। वे बुद्ध के यहाँ गए जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने त्रिरत्नों में शरण लेकर विदा लिया किंतु सोण वहां रुक गए एवं उन्होंने एक भिक्खु बनने के लिए अनुरोध किया। जब उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया तो वे चंक्रमण करते अर्थात चक्कर काट कर ढालते हुए प्रगति के लिए प्रयास करने लगे तथा उनके सुकुमार पैरों में फफोले पड़ गए। चंक्रमण स्थान रक्त से ढक गया। अतः बुद्ध उनके निकट गए तथा अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठे। उन्होंने सोण से पूछा, हे सोण, जब तू एकांत में विचार कर रहा था तो क्या तेरे मन में यह वितर्क पैदा नहीं हुआ कि भगवान के जितने भी प्रयत्नशील शिष्य हैं मैं उनमें से एक हूँ, तथापि मेरा चित्त चित्तमलों से विमुक्त नहीं है, मेरा परिवार अभी भी समृद्ध है, मैं इस धन का उपयोग कर पुण्य प्राप्त कर सकता हूँ, मान लो कि मैं गृहस्थ जीवन में पुनः लौट जाऊं तथा धन का उपयोग कर पुण्य अर्जित करूं। स्पष्टतः सोण सोचते थे कि अतीत में उन्होंने मुक्ति के लिए पर्याप्त पारमी नहीं अर्जित की थी किंतु उनकी समस्या यह नहीं थी। बुद्ध ने उनसे आगे पूछा, क्या तू गृहस्थ जीवन में वीणा वादन में कुशल था? सोण ने उत्तर दिया, हाँ भंते, जब तुम्हारी वीणा के तार आवश्यकता से अधिक कसे होते थे तो क्या तुम्हारी वीणा से अच्छे स्वर निकलते थे, क्या वह कमनीय रहती थी? उत्तर था, नहीं भंते। जब तुम्हारी वीणा के तार बहुत ढीले होते थे तो क्या उस समय तुम्हारी वीणा से अच्छे स्वर निकलते थे, क्या वह कमनीय रहती थी? तथा पुनः उत्तर था, नहीं। जब तुम्हारी वीणा के तार न तो आवश्यकता से अधिक कसे होते थे और न ही बहुत ढीले होते थे, किंतु सामान्य रूप से तने रहते थे, तो क्या तब तुम्हारी वीणा से अच्छे स्वर निकलते थे तथा क्या वह कमनीय रहती थी? सोन ने उत्तर दिया, हाँ भंते। इसी प्रकार हे सोन, अत्यंत प्रयत्नशील होना उद्धतपन का कारण हो जाता है तथा बहुत कम प्रयास आलस्य की ओर ले जाता है। अतः तुम समुचित संतुलित ऊर्जा के साथ काम करने का निश्चय कर, श्रद्धा आदि आध्यात्मिक इंद्रियों में समभाव प्राप्त कर, तथा ऐसा करते हुए निमित्त अर्थात ध्यान के विषय को ग्रहण कर। सोन ने उत्तर दिया, अच्छा भंते। आज शाम मात्र इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।